आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमांशी भरद्वाज और मैं आपके साथ आपकी साइंस की बुक को डिस्कस करूँ। आज हमारा ये सेकंड ऑडियो है क्लास 9 की साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर का, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को। इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उससे पहले हम आपके लास्ट एक्टिविटीज के कुछ रिकॉर्ड्स को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपने उनको जरूर करा होगा और आपके रिकॉर्ड्स के साथ आप रेडी होंगे। तो चलिए, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको हमारे रिकॉर्ड्स के साथ आप मैच कर लीजिए, देन हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो जो फर्स्ट एक्टिविटी थी आपकी, एक्टिविटी 1.1, उसके अंदर आपको एक बीकर के अंदर सॉल्ट या फिर शुगर को डिसॉल्व करना था, देन आपके जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको आपको रिकॉर्ड करके रखना था। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, What do you think has happened to the salt? उसमें आपको बस इतना ही लिखना है that the salt is dissolved in the water. जो salt है वो water के अंदर fully dissolved हो गया है, यही आपने लिखा होगा। Next, where does it disappear? ये salt या sugar कहाँ पर disappear हो गया, कहाँ गायब हो गया? The particles of salt filled in the gaps between the particles of matter. यही कंक्लूजन में आया था और यही आपको लिखना है कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो उन गैप्स के बीच में फिल हो गए हैं जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के अंदर हैं। दोबारा बोल देते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट फिल्ड इन द गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट, व्हाट डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, या डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? No, there is no change in the level of water. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, हमने तो उसके अंदर एक और मास ऐड किया है, एक चम्मच दो चम्मच ऐड किया है, बट वाटर लेवल राइज क्यों नहीं हुआ? तो इसका आंसर भी आपके सामने है कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट हैं, वो गैप्स के बीच में गए हैं या उन गैप या स्पेसेस में चले गए हैं जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के अंदर थे, इसी वजह से जो वाटर लेवल है वो राइज नहीं हुआ। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है, मैटर्स आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड देयर इज अ स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2, इसके ऑब्जर्वेशंस भी आपने नोट किए होंगे, जिसके अंदर आपको 2 to 3 क्रिस्टल्स लेने थे पोटेशियम पर मैग्नेट के, और उन्हें 100 ml ऑफ वाटर के अंदर डालना था, देन आप 10 ml निकाल कर उसको 90 ml वाटर में जब तक डाल रहे थे जब तक कि उसका कलर एकदम नॉर्मल हो जाए। सो इसके अंदर कुछ आपसे ज्यादा नहीं पूछा था, सिर्फ ये पूछा था इज द वाटर स्टिल कलर्ड, तो आपको ये बताना है 5 to 8 टाइम्स के बाद भी, यस वाटर इज स्टिल कलर्ड। दिस हैपेंस बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर स्प्रेड इन द वाटर। तो 5 to 8 बार करने के बाद जो आपका पानी है वो अभी भी थोड़ा सा कलर्ड रह जाएगा। ये एक स्टेज तब आएगी जब आप कम से कम इसे कई बार करें, 20 से 25 या उससे भी ज्यादा बार जब आप करेंगे तो एक स्टेज आ जाएगी जब वो पानी का कलर वाइट, जो नॉर्मल कलर होता है, कलरलेस होता है पानी, उस टाइप का होगा। अंटिल 5 to 8 टाइम्स तो वो कलर्ड ही रहने वाला है। सो आपने एक्टिविटी किया होगा आई होप, और उसमें आपका यही ऑब्जर्वेशन निकला होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी 1.3 थी, जिसके अंदर आपको एक अगरबत्ती को, एक इंसेंस स्टिक को अपनी क्लास के कॉर्नर में लगाना था, फिर उसके बाद उसको लाइट करना था और देखना था आपको क्या ऑब्जर्वेशन थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक एंड व्हाट हैपेंस, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो इसमें ये होता है कि जब आप उसे लाइट नहीं करते तो वन हैज टू गो वेरी क्लोज टू गेट द स्मेल ऑफ द अनलाइट इंसेंस स्टिक। ठीक है, आफ्टर लाइटिंग द इंसेंस स्टिक स्मोक स्टार्टेड टू कमिंग आउट ऑफ इट। ये आप अपने घर में भी देखते होंगे, आपके घर में मंदिर होगा, मंदिर में जब भी मम्मी पूजा करती हैं या पापा पूजा करते हैं तो जब वो अगरबत्ती को लाइट करते हैं तो पूरे घर में उसकी खुशबू आती है। उसका कारण है वो स्मोक जो उसमें से निकलता है। तो यही आपको ये भी यही समझना है दैट आफ्टर लाइटिंग द इंसेंस स्टिक स्मोक स्टार्टेड टू कमिंग आउट ऑफ इट। नेक्स्ट, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? तो आपने लिखा होगा यस नाउ वी कैन गेट स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक सिटिंग एट अ डिस्टेंस। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, आपकी एक्टिविटी में बोला था। इसका कंक्लूजन क्या है? दिस शोज दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर मूविंग कंटिन्यूअसली। दिस मीन्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर पजेस काइनेटिक एनर्जी। स्मेल ऑफ लाइट इज लाइटेड इंसेंस स्टिक डिफ्यूज विद एयर प्रेजेंट इन एयर एंड रीचेस टू अस सिटिंग एट अ डिस्टेंस। तो जो आपने अभी तक पढ़ा था लास्ट ऑडियो, ऑडियो नंबर वन में भी हमने डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेसेस होते हैं उसमें अपनी जगह बना लेते हैं। तो ये उसी तरीके से है। यहाँ पर भी जब हम लाइटन अप करते हैं उस अगरबत्ती को, तो जो उसके स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग वाले पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, और हमारे दूर बैठने पर भी हमें उसकी स्मेल आने लगती है। ठीक है, ये हुआ आपका एक्टिविटी 1.3। इसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी थी एक्टिविटी 1.4 में आपको दो बीकर्स लेने थे, एक हॉट वाटर का और एक कोल्ड वाटर का। तो आपके एक्टिविटीज के आधार पर आपको आंसर देना है इसका कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। एक में आपको इंक ड्रॉप डालना था, एक में आपको हनी का ड्रॉप डालना था। चलिए, अब जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, दैट इंक स्टार्टेड मिक्सिंग विद वाटर इमीडिएटली आफ्टर एडिंग, व्हिच इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जब हमने बीकर के अंदर इंक को डाला तो हमने देखा डालने के तुरंत बाद ही वो उसमें घुलना स्टार्ट हो गई और हमें छोटे छोटे धागे जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। हनी के केस में क्या हुआ? हनी स्लोली डायरेक्टेड टुवर्ड्स बॉटम ऑफ वाटर। तो जब हमने हनी का ड्रॉप डाला तो वो बॉटम ऑफ वाटर पे चला गया। इट टेक्स अबाउट 1 आवर टू स्प्रेड कलर ऑफ इंक थ्रू आउट द वाटर। अब जो टाइमिंग्स आपसे पूछी गई थी, दैट हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, तो जो इंक है वो 1 घंटे के अंदर हमारे ऑब्जर्वेशन में पूरे पानी में घुल गई। दिस हैपेंस बिकॉज इंक हैज अबाउट इक्वल और स्लाइटली हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ वाटर। तो जो इंक होता है उसकी डेंसिटी या तो पानी के बराबर है या थोड़ी सी ज्यादा होती है। सो इंक स्टार्टेड इमीडिएटली मिक्सिंग विद वाटर बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूविंग कंटिन्यूअसली। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इंक बहुत जल्दी पानी के साथ घुल गए। अब हनी की बात आई तो हनी की भी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, इस वजह से वो नीचे बैठ जाता है। डेंसिटी ऑफ हनी इज वेरी हाई देन दैट ऑफ वाटर, सो हनी स्टार्टेड टू डायरेक्ट टुवर्ड्स वाटर बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। दस आफ्टर सम टाइम पार्टिकल्स ऑफ इंक एंड वॉटर गेट मिक्स विद ईच अदर। तो यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगी हनी और वॉटर की, बिकॉज हनी जो है वो काफी डेंसाइल है पानी से। हालांकि आजकल जो हनी अवेलेबल है मार्केट में वो डेंसाइल नहीं है और वो प्योर भी नहीं है, जिस कारण वो पानी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट ऑडियो में हमने इस चैप्टर के आपको 2 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। पहला हमने पढ़ा था कि जो आपके आसपास मैटर है वो क्या होता है, और देन हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने जाना था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो हम अभी एक्टिविटी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। देन हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसके अंदर हमने पहला पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था 1.2.1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जिसके बेसिस पर अभी हमने एक्टिविटी भी किया। देन हमने 1.2.2 पढ़ा था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जिसके बेसिस पर हमने 3 एक्टिविटीज की हैं, 1.3, 1.4 एंड 1.5। सो अब ये 3 एक्टिविटीज आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज 1.2.3, पेज नंबर 3 पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये 3rd कैरेक्टरिस्टिक्स है कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मैटर के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद एन एक्टिविटी. एक्टिविटी 1.6, पेज नंबर 3 पर आपको एक एक्टिविटी दिया गया है 1.6. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. व्हिच यू हैव टू डू इन द फील्ड, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. आपको ये गेम किसी मैदान में खेलना है, आपको 4 लोगों का ग्रुप बनाना है और इस प्रकार की ह्यूमन चेन बनानी है. द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बीहू डांसर्स. सो बीहू एक डांस फॉर्म है जिसमें इस तरीके से डांस किया जाता है कि एक दूसरे को होल्ड किया जाता है पीछे की तरफ से और आर्म्स को लॉक कर लिया जाता है. दिस डांस फॉर्म इज कॉल्ड एज बीहू. और फिगर 1.3 के अंदर आपको बीहू डांसर्स का एक पिक्चर भी दिखाया गया है. सो फर्स्ट ग्रुप को इस तरीके से खड़ा होना है. द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन. सेकेंड ग्रुप को अपने हाथों को होल्ड करना है और एक ह्यूमन चेन बनानी है. द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स. तीसरे ग्रुप को जिसके अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं, उनको एक दूसरे के हाथों को केवल अपनी उंगलियों के टिप्स, फिंगर टिप से ही टच करना है, इस तरीके से चेन बनानी है. नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मेनी एज स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल. अब जो चौथा ग्रुप है, जो फोर्थ ग्रुप है 4 स्टूडेंट्स का, उनको इन 3 ग्रुप्स के आजू बाजू भागना है और दे हैव टू ट्राई टू ब्रेक द चेन, उनकी टू ब्रेक देयर चेन, उनकी चेन को तोड़ना है. सही है. विच ग्रुप वॉज इजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई. सो ये आपको अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर समझना है, बट हम यहाँ आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या आनी चाहिए. तो आप देखेंगे इस एक्टिविटी 1.6 में कि जो फोर्थ ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो इजी है ब्रेक करने के लिए. उस फोर्थ ग्रुप ने जिसने एक दूसरे को नहीं पकड़ा है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा. दिस इज बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट होल्डिंग हैंड्स और बाउंडेड इवन विद देयर फिंगर टिप्स. सो जो चौथा ग्रुप था जिन्होंने एक दूसरे को नहीं पकड़ा था, वो एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है या मिले हुए नहीं है, जिस वजह से उनको तोड़ना सबसे आसान है. दिस मीन्स दैट देयर वॉज नो बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन इन फोर्थ ग्रुप एंड कुड बी ब्रोकन इजिली. इसका मतलब है जब भी किसी के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगा या बॉन्डिंग फोर्स नहीं होगा तो उनको ब्रेक करना बहुत आसान हो जाएगा. तो जो फोर्थ ग्रुप है यहाँ पर, आप खुद भी देखेंगे जो फोर्थ ग्रुप है वो, उसको तोड़ना सबसे आसान होगा और सबसे मुश्किल होगा जिन्होंने बीहू डांसर्स के तरह से एक दूसरे को इंटरलॉक किया हुआ है. नेक्स्ट इसमें दिया है, इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स. अब इन्होंने बोला कि अगर हम कंसिडर करें हर स्टूडेंट को एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो किस ग्रुप में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं विद मैक्सिमम फोर्स. तो ये तो आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप था जिन्होंने एक दूसरे को आर्म्स के थ्रू इंटरलॉक किया हुआ था, वो सबसे टाइटली एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं और उन्होंने एक दूसरे को विद मैक्सिमम फोर्स पकड़ा हुआ है. सो दिस वॉज एक्टिविटी 1.6. आप अपने बेसिस पर, अपने एक्सपीरियंस पर इसको देख सकते हैं. नाउ एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड. सो यू हैव टू टेक 3 थिंग्स. 1, द आयरन नेल, एन आयरन नेल. नेक्स्ट, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड विच यू कैन फाइंड इजिली इन योर होम. ठीक है, आपको क्या लेना है, एक आयरन नेल लेना है, एक चॉक का पीस और एक रबर बैंड लेना है. ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. अब आपको उन तीनों को तोड़ने की कोशिश करना है. पहले वाले को हैमरिंग से यानी हथौड़ा मारकर, दूसरे को काटकर तीसरे रबर बैंड को स्ट्रेच करके. इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टूगेदर विद ग्रेटर फोर्स? अब आपको ये बताना है कि तीनों सब्सटेंसेस के अंदर कौन सा पार्टिकल एक दूसरे के साथ एक अपने साथ अपने पार्टिकल्स के साथ ग्रेटर फोर्स के साथ है. सो आयरन नेल डिड नॉट ब्रेक. तो जो आयरन नेल है आप देखेंगे कि वो टूटेगा नहीं. दस इट पार्टिकल्स ऑफ आयरन आर हेल्ड टूगेदर विद ग्रेटर फोर्स. सो यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी बाई योर ओन. देन आपको खुद अपने कंक्लूजन्स अपने रिजल्ट्स देखने हैं. ओके, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर जो आयरन नेल है वो ब्रेक नहीं होगा. बाकी पर आप मैक्सिमम फोर्स देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी. नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8. ओपन अ वॉटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वॉटर विद योर फिंगर्स. सो इन एक्टिविटी 1.8 यू हैव टू ओपन अ वॉटर टैप एंड यू हैव टू ट्राई breaking the stream of water with your fingers, which you have probably done in your childhood. आपने इसको किया भी होगा अपने childhood में कि आपने water tap चलाई है और आप उसकी धार जो पानी की धार निकल कर आती है उसको आपने अपने fingers से cut करने का कोशिश किया होगा. Were you able to cut the stream of water? क्या आप उस stream of water को cut कर पाए? What could be the reason behind the stream of water remaining together? So, यहाँ आपसे टू questions put up किए गए हैं. पहला कि आप उनको काट पाए stream of water को. दूसरा कि reason क्या है कि वो stream of water एक साथ ही रह रही है. So, according to me, हम उसको नहीं काट पाएंगे. We did not be able to cut the stream of water. And the reason behind the stream of water remaining together is that the particles of water are held together with force of attraction. Means, जो पानी के अंदर पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को काफी टाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से उसको काट नहीं सकते. सो यही रीजन है इसका 1.8 एक्टिविटी का. नेक्स्ट आगे देखेंगे. द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.6, 1.7 एंड 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. So, in teen activities se hum ye samajh pa rahe hain ki jo particles hote hain matter ke andar wo ek dusre se strong force ke dwara jude hote hain. Theek hai? The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. Means ये जो force present है वो matter to matter vary करती है. Means कोई matter iron का है तो उसके अंदर force of attraction अलग होगी. कोई matter wood का है तो उसके अंदर जो force of attraction है वो अलग होगा. उसका strength अलग होगा. पानी के अंदर अलग होगा. So ये यहाँ पर आपको इस topic के अंदर conclude किया गया है. So, ये हुए characteristics of matter या characteristics of particles of matter. Now, there are some in-text questions given on page number 3. हम उनको discuss करेंगे. Page number 3 पर आपको in-text questions दिए हैं. उनको हम पहले discuss करके चलेंगे. ठीक है? So, first question is, which of the following are matters? इनमें से कौन-कौन से matters हैं? Which of the following are matter? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, cold ring, smell of perfume. So here are some things and emotions given. आपको उनमें से choose करना है कि matter कौन-कौन से हैं. So, we have studied earlier that anything that occupies space and has some mass is called matter. So, इस definition के accordingly, जिस किसी भी चीज के पास अपना एक mass है और अपना एक space है, उसको matter कहा जाता है. Matter can exist in three physical states, solid, liquid and gas. इसको आगे भी पढ़ेंगे. सो हियर चेयर एंड आलमंड आर फॉर्म ऑफ मैटर्स इन सॉलिड स्टेट. हालांकि आपको सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं इसको डिवाइड करना है. यू हैव टू ओनली गिव कि इनमें से कौन कौन से मैटर हैं. तो चेयर और आलमंड मैटर हैं. कोल्ड ड्रिंक भी एक मैटर है, वो एक लिक्विड स्टेट में होता है. एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर गैशियस स्टेट ऑफ मैटर. तो जो एयर और स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो भी एक तरीके का मैटर है गैस के फॉर्म में. द सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट मैटर. यहां पर आपको एक बात नोट करनी है कि स्मेल का जो सेंस है वो मैटर नहीं है. However, the smell or odor of a substance is classified as matter. किसी चीज की खुशबू या किसी चीज की बदबू, दोनों ही चीज सुगंध और दुर्गंध दोनों ही चीज मैटर हैं, पर उनका सेंस वो मैटर नहीं है. The smell of any substance, say perfume, is the gaseous form of that substance which our olfactory system can detect. Hence, smell of perfume is matter. तो जो स्मेल है किसी भी चीज की, जैसे परफ्यूम की या खाने की स्मेल, वो गैशियस फॉर्म में होती है सब्सटेंस के, और उसको हमारा जो ऑल्फैक्टरी सिस्टम है, जो हमारी नाक है सूंघने में हेल्प करती है, वो उसको डिटेक्ट कर सकती है. सो ये मैटर्स हैं. यहाँ पर लव, हेट और थॉट और कोल्ड, ये चार चीजें मैटर नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टू, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. आपको नीचे दी गई हुई ऑब्जर्वेशन के लिए रीजन देना है. सो हियर इज द ऑब्जर्वेशन. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. सो ये क्वेश्चन दिया गया है जिसके लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन दी गई है कि जो गरम गरम खाना होता है उसकी स्मेल आपको दूर बैठे हुए भी आ जाती है, पर ठंडे खाने के लिए आपको उसके काफी क्लोज जाना पड़ता है उसकी स्मेल लेने के लिए. व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजन. सो अगर आपको याद हो, लास्ट ऑडियो में हमने आपके साथ डिफ्यूजन को डिस्कस किया था, एंड डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा, एंड टेम्परेचर ऑफ अ मैटर डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी. सो यहीं से उसको लेते हुए हम इसका आंसर बनाएंगे. सो यहां आपको बताना है सबसे पहले दैट सॉलिड्स डिफ्यूज एट अ वेरी स्लो रेट, बट इफ द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीज्ड देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन टू एयर इंक्रीजेस. This is due to an increase in kinetic energy of solid particles. Hence, the smell of hot sizzling food reaches us even at a distance, but to get the smell from cold food, we have to go close. So, आप समझ गए होंगे कि जब भी temperature बढ़ता है, यानी गर्म temperature होता है, तो जो rate of diffusion है solid particles का हवा के अंदर वो बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है जिसकी वजह से सॉलिड पार्टिकल्स की स्मेल दूर तक आती है. और ठंडे पानी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी वजह से हमें उसको सूंघने के लिए उसके काफी क्लोज जाना पड़ता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री. अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. एक डाइवर है जो स्विमिंग पूल के अंदर पानी को काटने में सक्षम है. Which property of matter does this observation show? ये matter की कौन सी property है जो ये observation दर्शाती है? So, the answer to this question is, the ability of a diver to cut through water in a swimming pool shows that what matter is made up of particles. जो matter है, वो particles का बना हुआ है, और particles के बीच में intermix spaces होते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो डाइवर उसको काट सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो आपको तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के, जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए. सो अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, नंबर वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. नंबर टू, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. नंबर थ्री, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये तीनों आपको पार्ट लिखने हैं. ये तीनों क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के. सो ये हुए आपके फोर क्वेश्चंस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि जो मैटर है वो किस स्टेट के अंदर हमें मिलता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 1.3. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. वॉट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid, and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Now let us study about the properties of these three states of matter in detail. So यहाँ आपको बोला गया है कि अपने surrounding में matter को observe कीजिए. आप उन matter के अंदर कौन-कौन से states को पाते हैं? सो स्टेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर कंडीशन है किसी भी मटेरियल की, मैटर की, किसी पर्सन की, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर होती है. स्टेट इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ एनीथिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम. सो आपको वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को ऑब्जर्व करना है. वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री सॉलिड थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, ये तीन ही हमें स्टेट्स मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये होती हैं किस कारण? वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर जो वेरिएशन आता है उसके कारण ये वेरिएशन होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस का. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल. अब हमें ये डिटेल में पढ़ना है. सो आपको इन तीनों स्टेट्स को पढ़ने के लिए आपके बुक के अंदर एक्टिविटीज के थ्रू बताया गया है. सबसे पहले है द सॉलिड स्टेट 1.3.1, द सॉलिड स्टेट, जो एक एक्टिविटी 1.9 से स्टार्ट हो रहा है. सो लेट्स बिगिन विद एन एक्टिविटी. एक्टिविटी 1.9, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड. आपको ये चीजें कलेक्ट करनी है, एक पेन, एक बुक, एक नीडल यानी सुई और एक धागे का टुकड़ा. स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम. अब आपको उन तीन जितने भी आर्टिकल्स आपको मिल गए उनके स्केचेस बनाने हैं अपनी नोटबुक में बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम. उनके अराउंड पेंसिल को घुमा घुमा कर, जैसा आपने अपने चाइल्डहुड में भी किया होगा आपके ड्रॉइंग क्लासेस में. Do all these have a definite shape? क्या इन सभी की एक definite shape है? Distinct boundaries and a fixed volume. क्या इनकी एक definite shape है? यानी कि इनकी जो shape है वो एक ही रहती है. क्या इनकी अलग अलग boundaries हैं? या इनका एक fixed volume है? ये आपको खुद से observe करना है. What happens if they are hammered, pulled or dropped? क्या होगा अगर इन्हें hammer किया जाएगा, इनको हथौड़े से मारा जाएगा या खींचा जाएगा या नीचे फेंक दिया जाएगा. आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग ईच अदर? क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो पा रहे हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? सो इन्होंने लास्ट में बोला है कि इनको दबाइए, इन्हें कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए. क्या आप इनको कंप्रेस कर पा रहे हैं? सो अकॉर्डिंग टू मी इसके जो इलस्ट्रेशंस आएंगे वो होगा that yes, all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume. जितने भी अभी हमने यहाँ articles लिए उन सभी की एक definite shape है, distinct boundaries हैं और एक fixed volume है. अब जब हम उनको फेंक रहे हैं या हथौड़े से मार रहे हैं या खींच रहे हैं या compress कर रहे हैं, तब तब क्या क्या होगा? So book क्या होगी? मेरी book फट जाएगी. बुक इज टॉर्न व्हेन पुल्ड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स. बुक फट जाएगी जब हम उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ खींचेंगे. पेन एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक आर ब्रोकन व्हेन हैमर्ड. पेन और जो वुडन स्टिक है वो उस पे हैमरिंग करने पर
वो दोनों चीजें टूट जाएंगी. None is capable of diffusing into each other. None is compressible. कोई भी एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं हो पा रहा है और कोई भी कंप्रेसिबल नहीं है. ये ही उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस आएंगी और नेक्स्ट ऑडियो में सॉलिड स्टेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी आप यहीं तक रिवाइज कीजिए. थैंक यू.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.